मेरे प्यारे युवा साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग सीधे आज मुख्य विषय पर बात करते हैं और बात करते हैं कि पावर ऑफ एलिमिनेशन की क्षमता का कैसे विकास किया जाए। और इसका जो सबसे प्रमुख बिंदु है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कह दूं कि एकमात्र बिंदु है, वह है पढ़ने का ढंग, आर्ट ऑफ स्टडी। और यहां जब मैं आर्ट ऑफ स्टडी कह रहा हूं तो ये सामान्य तरीके का आर्ट ऑफ स्टडी नहीं है। सामान्य तरीके का आर्ट ऑफ स्टडी कहने का मतलब है कि आप अभी तक पढ़ते ही आए हैं, आपने ट्वेल्थ पास किया है, चाहे सीबीएसई से किया हो या फिर स्टेट के बोर्ड से किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया है चाहे किसी भी कॉलेज से किया हो, लेकिन किया तो है और उसके लिए आपने पढ़ाई की है, ये आपने एक्वायर किया है, ये आपने हासिल की है, आपको किसी ने दे नहीं दी है, आपने हासिल किया है और पढ़कर हासिल किया है, राइट? उसके लिए भी एक आर्ट ऑफ स्टडी है, क्योंकि जितने भी लोग आपके साथ पढ़ रहे थे उनको पढ़ाने वाले तो समान लोग थे, वही लोग पढ़ाते थे, लगभग सब एक जैसी किताबें भी पढ़ते थे, पेपर सबके एक जैसे आए थे, कॉपियां भी लगभग एक ही जैसे प्रोफेसर्स लेक्चरर्स ने जांची, लेकिन मार्क्स सबके एक जैसे नहीं है, सच पूछे तो किसी भी दो के एक जैसे नहीं है। तो ये अंतर कहां से आया? देखिए, सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में एक बात आती है, जब हम कहते हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट है तो हमें लगता है कि यार उसकी जो मेमोरी पावर है ना वो बहुत अच्छी है, राइट? हमें ये लगता है कि नहीं, वो बहुत मेहनती है, वो इतने इतने घंटे पढ़ता है। और ऐसा वो कैसे कर पाता है? उसके पास फैसिलिटी बहुत है। इस तरह की बातें हम लोगों के दिमाग में आती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी बातें गलत हैं, इनका अपना अपना रोल है, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन दोस्तों सब कुछ यही नहीं है, सब कुछ यही नहीं है। तो फिर क्या है, वो कौन है जो सब कुछ है? यदि सब कुछ नहीं है तो सब कुछ के करीब है, या कि जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? दोस्तों वो है आर्ट ऑफ स्टडी, यानी कि जो आपके यहां का टॉपर है उसके पढ़ने का तरीका अलग है, और जो बिल्कुल नीचे से टॉप किया हुआ है, जो बॉटम पर है, उसके पढ़ने का तरीका अलग है। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ नाइन्थ की जो पढ़ाई है वो मैंने स्कूल में कल की थी, मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर में, उस समय स्कूल था, हाई स्कूल था, गांव से मैं वहां पढ़ने गया था, और मैंने बायोलॉजी ली थी। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो गांव में तो मेरी पढ़ाई बड़ी अच्छी हो रही थी और मैं टॉपर भी था गांव के स्कूल का, और हमारा 8वीं बोर्ड हुआ था वहीं ब्लॉक लेवल पर, उसमें भी मैंने टॉप किया था, तो मुझे लगता था कि मैं बड़ा कोई 30 मार्क का होऊंगा। गलत फहमियां तो हो जाती हैं, और गलत फहमियां हो क्या जाती हैं, उसके लिए प्रमाण था कि भैया मैंने ब्लॉक लेवल पर टॉप किया है। मैं सारा सिलेबस पढ़ लेता था, जितने प्रश्न आते थे वो सब बना करके चला आता था, लिख करके आ जाता था, तो अब इससे ज्यादा क्या होना चाहिए। चलिए, चूंकि मार्क्स अधिक थे तो उस समय साइंस में एडमिशन सीधे नहीं मिलता, अच्छे स्टूडेंट्स को मिलता था, और संयोगवश में ऐसा था। तो दोस्तों जब नाइन्थ में मैंने एडमिशन लिया तो वहीं एक और एक स्टूडेंट था जो बायोलॉजी से नाइन्थ कर रहा था, उसका नाम था जितेंद्र सिंह, आज वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, और अंबिकापुर में उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। अभी कुछ समय पहले जब मुझे अंबिकापुर जाने का मौका मिला था तो मैं गया और पूरा अस्पताल लोगों ने विजिट किया, और मैं सच पूछे तो बड़ा रोमांचित तो हो गया जब वो बकायदे अपने वार्ड को देख रहा था, मतलब वहां पेशेंट देख रहा था, और जैसे ही नर्स ने जाकर के कहा कि डॉक्टर विजय अग्रवाल आए हुए हैं भोपाल से, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मतलब आ गया कहूं या आ गए कहूं, मैं थोड़ा सा अटपटा सा महसूस कर रहा हूं। और हम लोगों ने फिर खूब बातें की, मैंने कहा कि जितेंद्र जाओ जाकर के पेशेंट को देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप यहां आ गए हैं छोड़ छाड़ करके, लेकिन बोले कोई बात नहीं, वो मैं कर लूंगा, उसकी चिंता मत करो। दोस्तों बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं भटक गया, माफी चाहूंगा। तो मजे की बात यह होती थी कि वो जो डॉक्टर जितेंद्र जो सिंह थे वो पढ़ता बहुत कम था, और मैं उसकी तुलना में शायद कई गुना ज्यादा पढ़ता था। अब सवाल यह है कि उसके परिणाम क्या होते थे। परिणाम यह होते थे कि वो मुझसे ज्यादा मार्क्स लाता था, ज्यादा मार्क्स। उस समय तिमाही परीक्षा होती थी, छमाही परीक्षा होती थी, और एनुअल वार्षिक परीक्षा होती थी, तीनों में उसके मार्क्स ज्यादा आए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यहां भी फर्स्ट आऊं, अपनी क्लास में फर्स्ट आऊं, लेकिन मैं नहीं आ सका, मैं सेकंड पे रहा। तो मुझे यह लगता था कि ये बहुत ब्रिलियंट है, इसका माइंड बहुत तेज है, याद बहुत रहती है। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, याद उतनी ज्यादा नहीं रहती थी, क्योंकि कभी कभी होते थे कि उनके जो भाई थे वो डॉक्टर थे, जब हम लोग घर पर जाते थे तो उनके भाई हम दोनों से क्वेश्चन करना शुरू कर देते थे, तो जितेंद्र से भी पूछते थे, मुझसे भी पूछते थे, तो मैं तो उत्तर बता देता था लेकिन जितेंद्र नहीं बता पाता था, तो जितेंद्र को बड़ी डांट पड़ती थी कि तुम क्या करते हो, स्कूल जाते हो, इसको देखो। तो वहां तो मेरी तारीफ हो जाती थी क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाकू किस्म का था, रटने की कोशिश करता था, लेकिन मैं देखता था कि वो वहां उत्तर नहीं दे पाता, मैं खुश भी हो जाता था कि यार ये तो बता नहीं पा रहा जितेंद्र से, इससे तो ज्यादा मेरे नंबर आने ही आने हैं, लेकिन मेरे नहीं आते थे, कभी नहीं आए। और ऐसा नहीं कि फर्क कोई दो चार नंबर का होता था, काफी फर्क होता था, और मैं कभी उसे क्रॉस नहीं कर पाया। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता रहा हूं, तो वो रहस्य कहां था दोस्तों, जो सारा का सारा रहस्य जो मुझे बहुत बाद में पता लगा, या ऐसा नहीं कि उन्होंने जितेंद्र से मैंने पूछा और जितेंद्र ने बताया, हो जो सबसे बड़ी बात है यह है कि वो पढ़ता इस तरीके से था कि उसकी चीजें समझ में आ जाती थी, वो चीजों को समझ लेता था, और मुझे चीजों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, और जिन्हें मैं नहीं समझ पाता था उन्हें मैं रट लेता था, वो ऐसा नहीं करता था। और बाद में फिर जो मेडिकल के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें उसने टॉप किया, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि MBBS और MD में भी उसने टॉप किया, वो थ्रू आउट टॉपर स्टूडेंट ही रहा, जबकि बहुत ही मस्त मौला, बहुत ही मस्त रहने वाला, कोई तनाव में नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो सिविल सर्विस में बैठता तो आज वो सिविल सर्वेंट ही होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसके पढ़ने का तरीका ऐसा था। तो दोस्तों, पहली बात जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, मैंने जानबूझ करके ये किस्सा बताया है क्योंकि जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों से कहा था कि मुझे बताना ये बड़ा मुश्किल है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि भैया पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन लोगों को लगता है कि किताब है, सिलेबस है, पढ़ रहे हैं, रट लिया है, 10-10 बार याद कर लिया है, रिविजन कर लिया है, और क्या पढ़े और क्या होता है तरीका। दोस्तों, केवल एक ही लाइन है और वो ये कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। जब मैं कह रहा हूं कि समझना है तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि समझना को भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, कि समझना है तो क्या मतलब है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जो हमारी एजुकेशन होती है इससे पहले, सिविल सर्विस में बैठने से पहले, वो ज्यादातर रटने पर है। रट लिया हमने, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी उसी तरह के आ जाते हैं और हम उनके उत्तर भी लिख करके आ जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। इसीलिए तो मेंस को क्वालिफाई करना लोगों के लिए बिल्कुल मतलब कह लीजिए कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके के नहीं पूछे जाते कि वो एवरेस्ट की चढ़ाई बन जाए। ठीक है, वो मैदान की दौड़ नहीं है, लेकिन है वो पहाड़ी की ही चढ़ाई। बस थोड़ी सी भी अगर विषय की समझ है तो मुझे नहीं लगता है कि मेंस के आंसर देने में दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मेंस के आंसर देने में, कि क्या लिखें, कैसे लिखें, कहां से शुरू करें, कहां अंत करें, यह संकट आता ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने विषय को समझा नहीं है। तो विषय को समझने का मतलब क्या है, अब हम इसे थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, मैं अपने ढंग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, कुछ तो साइंस के ही हैं, थोड़ा सा साइंस का हिस्सा है, बाकी सारे के सारे विषय आर्ट्स हैं। आप ह्यूमैनिटीज के विषय मानते हैं ना, और सामान्य तौर पर कहते हैं क्या लिया, आर्ट्स। वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट है, तो लोग आर्ट्स को एक तरीके से थोड़ी कहीं ना कहीं घटिया निगाह से देखते हैं, या नीची निगाह से देखते हैं, या सोचते हैं कि अरे ऐसे स्टूडेंट होगा, इसने आर्ट्स ले रखा है, आर्ट्स इसलिए ले लिया होगा क्योंकि पढ़ने में कमजोर होगा। हम लोग के समय में तो यही होता था कि पढ़ने में कमजोर होगा। मुझे खुशी है कि अब ये धारणा धीरे धीरे बदल रही है और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि बाहर उनको अब उस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि अब आर्ट्स से भी हम ये कमाल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, स्टूडेंट तो जब सब्जेक्ट लेगा तो यही सोच करके लेगा, उसके पेरेंट्स भी यही सोचकर उसको सब्जेक्ट दिलाएंगे कि भैया ये पढ़ लिख कर आगे करेगा क्या, वो विषय इसके कितने काम आएंगे। और जब हम कहते हैं कितने काम आएंगे तो उसका सीधे संबंध आजीविका से होता है, और वो गलत नहीं है व्यवहारिक स्तर पर। तो दोस्तों, जो समझना है उसके लिए जो मैं पहला तथ्य आपको बताना चाहूंगा, जो उसका जो पहला एलिमेंट है, वो ये है कि विषय तो आर्ट्स के हैं लेकिन आपको इन्हें साइंस की तरह पढ़ना है, साइंस की तरह पढ़ना है। और सच पूछिए तो डिसिप्लिन तो आर्ट्स है लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि यह साइंस से कम नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूं, इनफैक्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए साइंस कैसे है। शायद इस छोटे से उदाहरण से आप समझ जाएं और मुझे लगता है कि कन्विंस भी हो जाएं। उदाहरण है कि आप कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस, बायो का मतलब है जैविक, तो आप उसे जीव विज्ञान कह लीजिए, जैविक शास्त्र कह लीजिए, जो भी कहना चाहे आप कह लीजिए, बायोलॉजी। आर्ट्स में जिसे सबसे सरल विषय माना जाता है, आर्ट्स में भी फिर अपनी तरह के वर्गीकरण है कि भैया कठिन विषय कौन सा है, जो इकोनॉमिक्स से आर्ट्स कर रहा है वो ज्यादा सम्मान का पात्र है, और जो सोशियोलॉजी में कर रहा है अरे वो तो सोशियोलॉजी में कर रहा है, क्या है, कोई भी ले लेता है, कोई भी पास हो जाता है, उसमें क्या रखा हुआ है। सोशियोलॉजी, वहां बायोलॉजी और यहां सोशियोलॉजी। ये लॉजी क्यों है, सोशियो के साथ लॉजी क्यों लगा हुआ है, आपको सोचना चाहिए इस पर। पॉलिटिक्स की जगह एक विषय होता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल के साथ साइंस क्यों लग गया, कुछ और लगा देते, पॉलिटिकल आर्ट्स क्यों नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों बस मेरी इन बातों पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए और मैं चाहूंगा कि मुझे वक्त दीजिए ताकि मैं ये बातें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा सकूं। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।